بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین میں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ جو وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق میں وَمَغَارِبَهَا اور زمین کے مغرب میں التی بارکنا فیہا جس میں برکت رکھی تھی ہم نے. وتمت کلمت ربک الحسنی اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا. علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بما صبروا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما كانوا يعرشون اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے اور جو اونچا کر کے چھپایا ہوا تھا. قرآن پاک کی یہ آیت اس میں اللہ رب العزت نے جو آخر میں فرعونیوں کے ساتھ ہوا اور جو کامیابی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے دی اس کا تذکرہ اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ نے فرمایا کہ جی کیا کامیابی کہ جو بیچارے بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے اور یہ متکبر لوگوں کی عقل اتنی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے, وہ بس اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کسی بزرگ نے مثال دی متکبر لوگوں کی, متکبر بندے کی کا حال اس بندے کا ہے جو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, تو وہ اوپر کھڑا ہوا نیچے والوں کو دیکھ رہا ہے تو اسے نیچے والے چھوٹے نظر آتے ہیں, اور حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اتنے چھوٹے نہیں ہوتے. جتنا بڑا وہ اوپر ہوتا ہے اتنے ہی وہ نیچے کھڑے ہو کے بھی وہ چھوٹے, ان کی بھی وزن اور ان کا بھی ہائٹ ان کا بھی قد کاٹ اتنا ہی ہے. یہ کیونکہ اوپر کھڑا ہوا ہے حقیقت حال سے واقف نہیں ہے تو نیچے والوں کو دیکھ کے یہی سمجھتا ہے کہ یہ نیچے والے چھوٹے سے میں بہت بڑا ہوں. تو یہ ایک بے وقوفانہ حال ہوتا ہے متکبر لوگوں کا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے سمجھے کہ جو نیچے کھڑا ہوا ہے وہ سارے میرے سے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, کیونکہ نظر جو چھوٹے آ رہے ہوتے ہیں. تو متکبر شخص کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اس لیے ساروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے. حقیقت یہی ہوتی ہے کہ ان میں سے کئی سارے آپ سے بڑے بھی ہوتے ہیں اور کئی سارے آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں. تو اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے فرعون والوں کا حال بتایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو غرق کیا اور اللہ نے وارث بنا دیا زمین میں ان لوگوں کو جو بڑے کمزور سمجھے جاتے ہیں, اور وہ اتنے کمزور تھے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مشارق الارض و مغاربہا زمین کے مشرق اور زمین کے مغرب کا वारिस बना दिया, मालिक बना दिया। ज़ाहिरन तो ऐसा लग रहा है कि इससे मुराद ये है कि पूरी दुनिया, जमीन के मशरिक का भी और मगरिब का भी, हर तरफ का। मगर मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये मशरिक और मगरिब जो है मौसम के हवाले से है, यानी इस मशरिक और मगरिब से उस जमाने का मशरिक और मगरिब जो था वो मुल्क शाम और मुल्क मिस्र था। तो मुल्क शाम और मुल्क मिस्र का उनको बादशाह बना दिया, ये एक मशरिक में था एक उनके मगरिब में था, तो इसलिए ये दो जगहों को मशारिक और मगारिब कहा गया। और ये भी फरमा दिया गया अल्लती बारकना फीहा, कि इसमें अल्लाह ने बहुत सारी बरकतें रखी थी जमीन में, और इस जमीन में बरकतें दोनों किस्म की थी, जाहिरी बरकत भी और बातनी बरकत भी। जाहिरी बरकत ये है कि यहाँ पे पैदावार खूब होती थी, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, और इसी तरह जो फसलें होती हैं वो भी खूब पैदा होती थी। मगर इसके अंदर जो बातनी बरकतें हैं वो बहुत ज्यादा, कि ये तमाम अंबिया के आने की जगह, जिन अंबिया का तस्करा कुरान में किया है अल्लाह ने, अक्सर अंबिया इन्हीं जगहों से, या सारे ही अंबिया इन्हीं जगहों के हैं, इस इलाके से अंबिया इकराम आए हैं, तो इसलिए ये बरकत वाली जगह है कि जाहिरी बरकत भी यहाँ मौजूद है और बातनी बरकत भी यहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कमजोर जो समझे जाते थे, जो बेचारे बेवकूफ समझे जाते थे, जो बेचारे माल के एतबार से, ताकत के एतबार से कम समझे जाते थे, अल्लाह ने उनको मालिक बना दिया। और जो ताकतवर थे, जो फिरौन था, जो दूसरों के बच्चों को भी कत्ल कर ले तो कोई कुछ नहीं कह सकता था, जिनको जो हर तरह की बेईमानी कर ले तो कोई उनको कुछ नहीं कह सकता था, उनका हाल ये कि अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। इसलिए इंसान को आजजी ही सजती है, किसी भी दूसरे इंसान को अपने से कम ना समझे। हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल करने का यहाँ पे वक्त आ गया। हजरत फरमाते हैं कि मैं अपने आप को हर मुसलमान से कम तो समझता हूँ, काफिर से भी अपने आप को कम समझता हूँ। अल्लाह अकबर, यानी नेकी और तकवा और अल्लाह के यहाँ कबूलियत इतनी के उलमा के नजदीक तो ये 13वीं सदी इस्लाम के मुजद्दिद हैं, हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और शेख तरीकत में भी जो इन्होंने बहुत ज्यादा बरे सगीर में इनकी जो तरीकत सिलसिला अलिया चिश्तिया की है वही सबसे ज्यादा और सबसे मोतबर समझी जाती है। तो तसव्वुफ के शेख भी बड़े हजरत ही हैं। इल्म का ये आलम के हजरत ने बिल वास्ता या बिला वास्ता जो किताबें लिखी उनकी तादाद भी 2000 से ज्यादा तजावुज कर गई। बड़े बड़े उलमा हजरत के खुलफा, इतनी बड़ी शख्सियत, और फरमा क्या रहे हैं कि जी मैं अपने आप को हर मुसलमान से तो कम समझता ही हूं, हर काफिर से भी अपने आप को कम समझता हूं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बुजुर्ग ने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया। किसी ने हजरत से पूछ लिया कि हजरत चले अगर आपने अपने आप को हर मुसलमान से कम तर समझ लिया, कि मुसलमान के बारे में ये भी सोच सकता है बंदा कि उसने तौबा की और तौबा करके उसके सारे गुनाह जो है वो माफ हो गए, और कई मरतबा अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में बदल जाते हैं, तो कई मरतबा बहुत बड़ा गुनाहगार जो होता है बहुत नेक बंदे से भी आगे निकल जाता है। तो ईमान वाले से तो बंदा अपने आप को कमतर समझे ही सही, कि आज ईमान वाला जो गुनाहगार है जिनको हम बहुत ही नीची निगाह से देख रहे हैं कि भाई इसका क्या मेरे से मुकाबला, तो नमाजें भी नहीं पढ़ता है, गफलत में है, ये गुनाह करता है, इस तरह से बेपर्दगी करता है, مگر کئی مرتبہ انسان توبہ کرتا ہے, سارے گناہ ختم بھی ہو جاتے ہیں, سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی ایمان والے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اس سے بڑا افضل ہوں. تو پوچھنے والے نے حضرت سے سوال یہ پوچھا کہ حضرت ٹھیک ہے چلے مسلمانوں سے تو آپ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ سکتے ہیں, آپ نے یہ سکھایا بھی ہے اور یہی سوچ ہونی چاہیے, کافر سے اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھ سکتے ہیں؟ کافر سے تو بندہ اپنے آپ کو زیادہ ہی سمجھے, کیونکہ کافر تو کافر ہے, اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہونی ہے کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لایا. تو حضرت نے جواب دیا کہ مسلمان سے اپنے آپ کو کمتر حالن سمجھتا ہوں اور کافر کو سے اپنے آپ کو کمتر احتمالن سمجھتا ہوں, کہ بہرحال احتمال تو ہے نا کہ یہ کافر ایمان لا سکتا ہے. جس وقت ایمان لائے گا اس وقت سارے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے بالکل کلین. جس طرح بچہ والدہ کے بطن سے پیدا ہوتا ہے اس وقت جو گناہ سے پاک ہوتا ہے, ایمان لاتے وقت اسی طرح گناہ سے پاک ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے نہ کسی مسلمان سے اپنے آپ کو افضل, نہ کسی کافر سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو نیک بزرگوں سے علماء کے بارے میں بھی جملے کسنے میں ہم رکتے نہیں ہیں. یہ فلاں عالم نے آج یوں کیا, بھائی انہوں نے ایسے کیسے کر لیا, یہ تو دین میں صحیح نہیں ہے, یہ دین میں خراب ہے, بھائی یہ تو یوں کرتے ہیں, فلاں تو یوں کرتے ہیں, خوب جملے کس رہے ہوتے ہیں ہم اور سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم کتنا نیچے چلے گئے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان عبادت کے عروج پہ ہوتا ہے نا, اللہ کے بہت مقرب بھی ہوتا ہے, اس کے دل میں صرف تھوڑی سی چھپی ہوئی نفرت آ جاتی ہے نا کسی مومن کے لیے, سب سے جو اونچا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے نیچے ہو جاتا ہے. کہ حدیث پاک میں آیا کہ جس کے دل میں چھپی ہوئی نفرت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے, کینہ ہوتا ہے, اس کی دعا تو شب قدر کی رات بھی قبول نہیں ہوتی. ہر گناہگار کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں. یہ ایسا گناہگار, یہ اتنا نیچے چلے گیا کہ شب قدر کی رات بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. تو کسی وقت بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت افضل ہوں یا میں بہت ہی زیادہ دوسروں سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ جب چاہے یہ ٹیبلز کو ٹرن کر سکتے ہیں, جب چاہے تو حالات کو بدل سکتے ہیں. اور یہی ہوا, یہ فرعون والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے, بیچارے کمزور غریب جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جو تعداد میں بھی تھوڑے ہیں, نہ ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں جیسے ہماری عمارتیں ہیں, نہ ان کے پاس ایسے بڑے بڑے کاروبار, نہ ان کے پاس فوجیں ہیں, ان کے بچوں کو سب کو قتل کر دیتا ہوں تو بیچاروں کے پاس کچھ کہنے کو ہے نہیں, یہ کیا بڑی بات کریں گے. تو سوچ تو ایسے ہی رہا تھا فرعون, مگر اللہ نے دکھایا. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کمزور سمجھے جاتے تھے ہم نے ان کو مالک بنا دیا, ملکوں کا مالک بنا دیا. اسی مبارک آیت میں ایک اور اہم بات آئی ہے, اور وہ یہ کہ مالک کیوں بنایا اللہ نے ان کمزور لوگوں کو, تو وہ قابل, یہ بات ذرا قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, الحسنہ اچھا وعدہ, علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل پر اپنا وعدہ پورا کر دیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وعدہ پورا کر دیا کہ ان کمزوروں کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا. وجہ کیا بتائی؟ بما صبروا, بس سبب ان کے صبر کرنے کے. تو یہ جو سارا جو اللہ تعالی پلٹا دیتے ہیں कि जो कमजोर होता है उसको ताकतवर पोजीशन में ले आते हैं, इसकी वजह सबर होती है। ये बात समझनी जरूरी है। कुरान के तालिब इल्म हो और बेसब्रा हो, ये समझ लें कि इसने अपने कुरान पढ़ने से कुछ सीखा नहीं है कि बार बार एक ही पैगाम कुरान में आ रहा है। इस मुबारक आयत में भी एक मर्तबा फिर सबर का दर्स मिलता है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से फरमाया कि ये इनाम जो इनको मिला बनी इसराइल को, मूसा अलैह सलाम की कौम को, सबर की वजह से मिला। तो जो शख्स सबर इख्तियार करता है, मूसा अलैह सलाम की कौम को इतना बड़ा सबर मिल गया, इतने कमजोर थे कामयाब हो गए। इस वक्त भी हर जगह हर कौम में जो भी सबर करेगा उसको यही नेमत मिलेगी, वो अपनी कमजोर पोजीशन में से ताकतवर पोजीशन पे आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, लड़ाई झगड़ा करके मैं ताकतवर पोजीशन में हूं, फलाने ने मेरे साथ जुल्म किया, अब मैं उसको उसका इंतकाम लूं और उसको नीचा दिखाऊं। तो कई मर्तबा उसने मुझे ये बात की, अब मैं इससे भी ज्यादा गलीज बात इससे करूं, इसने मुझे सख्त बात की मैं और सख्ती करूं, वो मुझे यूं तकलीफ देता है मैं इसको और इस तरह से तकलीफ दूं कि उसको मेरी अपनी तकलीफ से भी ज्यादा तकलीफ लगे। तो हम समझते हैं ये हल है, इंतकाम लेना ये ही हल है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं, सबर करना जो है ये हल है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने वादा किया और वादा अपनी कौम से किया कि बहुत जल्द तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमीन का मालिक बनाएंगे, पहले ही बता दिया। मगर तुमने दो चीजें करनी है, एक अल्लाह से दुआ मांगते रहना है और एक ये जो मुश्किलें मुसीबतें आ रही हैं तो उसमें सबर करना है, हटना नहीं है ईमान से, इंतजार करना है अल्लाह की मदद का। कुछ उलमा भी ये मौकिफ रखते हैं कि जी सबर यही है कि इंसान जो है वो सबर के साथ लड़ाई झगड़ा करे, इसको सबर कहते हैं। तो जब लड़ाई झगड़ा ही करना है दूसरों के साथ तो फिर सबर कहाँ गया? नबी अलैहिस्सलाम ने तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूं कि जिस पे जुल्म हुआ और उसने उस जुल्म पे सबर कर लिया, जुल्म को बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह के प्यारे महबूब फरमा रहे मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इज्जतों में इजाफा फरमाएंगे। इसीलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया गया है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जो शख्स किसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर मुखालिफ के सामने आ जाए दिफा भी नहीं कर सकता है, तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते मुकाबला ना करे, सबर करे, मामलात अल्लाह पे छोड़ दे, बस अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह के साथ दुआ करे, अल्लाह से माफी मांगे। तो जब कोई ईजा का मुकाबला ईजा से नहीं करता बल्कि अल्लाह किससे, अल्लाह से दुआ करने से करता है, जब कोई शख्स अल्लाह को याद करने से करता है, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी मदद के रास्ते खोल देते हैं। हदीस पाक में आता है मन लज़िम अल इस्तग़फ़ार, जो अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लेता है अल्लाह ताला हर तंगी में से उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं, हर गम में से उसको निजात दे देते हैं, उसको वहां से रिज़्क़ देते हैं जहां से उसको यकीन भी नहीं था, जहां से उसको गुमान भी नहीं था वहां से उसको रिस्क मिल जाता है। तो बनी इसराइल को ये जो कामयाबी मिली ये सबर करने से मिली। इसलिए सबर करने के हवाले से कुरानी मौकिफ इख्तियार करना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग और कुछ हालात हमें ऐसे आएंगे जिसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, कोई हमारी तदबीर चलेगी नहीं, जो चाहे कर ले हमारी मतलब का चीज हमें नहीं मिल सके कि सबर ही करना पड़ेगा। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ वल जुअ वनक्स मिनल अमवाल वल अनफुस, कि हम आजमाएंगे तुझे खौफ से, भूख से, माल के कम होने से, आपके लोगों के कम होने से। तो जो भी कर लो, कुछ हालात अल्लाह ने भेजने हैं, जो हम हालात चाह रहे हैं वैसे जो भी कर लें उस तरह से नहीं होंगे, जो अल्लाह ने भेजना है वही होना है। इतनी ये पक्की बात है कि अंग्रेज भी कह उठा कि लाइफ इज 90% हाउ यू टेक इट एंड 10% हाउ यू मेक इट, कि 90% तो बस जो अल्लाह ने फैसले करने हैं वही कबूल करने पड़ेंगे, 10% थोड़ा बहुत हमारे हाथ में है। तो इसलिए हालात के मामले में इंसान ये बर्दाश्त कर ले, ये ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए कि मुश्किलात आनी है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहे हैं वजालना बाज़ुकुम लिबाज़िन फितना, हमने तुम्हारे कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों को बड़ी आजमाइश बना दिया है। तो जैसे फिरौन को आजमाइश बनाया हुआ था बनी इसराइल के लिए, तो हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता जरूर है जो उसके लिए आजमाइश बना हुआ होता है। तो अपने हाथ से उस आजमाइश को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इंसान के बस में कुछ होता ही नहीं। कई मरतबा औलाद आजमाइश बनी हुई होती है तो औलाद को क्या कत्ल करते हैं ना उस बिल्ला, बस इस आजमाइश को बर्दाश्त करना। कई मरतबा इतने करीबी रिश्तेदार आजमाइश बने होते हैं कि ना लड़ाई कर सकते हैं और ना उनकी बात जो है या ना उनके मामलात जो है उनको कबूल करना आसान होता है, मगर ये दुनिया है ही ऐसी, इसमें हालात मुश्किलात आने ही हैं। अगर दुनिया में मुश्किलात ही ना होती तो फिर दुनिया और जन्नत में फर्क क्या रहता था। तो कुरानी उसूल सबर के मामले में सबसे पहला उसूल तो ये है कि सबर आजमा, हालात आएंगे, इंसान जो चाहे कर ले, सबर वाला मामला होना ही है। मगर सबर और मुश्किलात और तकलीफों पे एक मेंटल प्रिपरेशन होती है, इंसान जहनी तौर पे तैयार रहे और जहनी तौर पे अपने आप को मनाए कि देखो आज सबर कर लूंगा, किसी ने मेरे साथ ज्यादती की, तकलीफ दी, नुकसान पहुंचाया, आपका जहनी कहता है सबर कर लूंगा तो उस पर अजर बहुत मिलेगा। जैसे एक बंदा है नौकरी करता है पूरी रात की, चौकीदार की नौकरी करता है पूरी रात, अपनी नींद को तबाह बर्बाद करता है, उसको पता है कि जी ये काम करूंगा तो महीने के आखिर में मुझे तनख्वाह जो मिलेगी, अपना भी पेट पालूंगा, बीवी बच्चों का भी पेट पालूंगा, तो इसलिए कर लेता है। जहनी तौर पर तैयार होता है कि जी रात को नहीं सोना है, तो ये तकलीफ उसने बर्दाश्त की। इसीलिए बेहतर यह है कि कुरान पढ़ने वाला जहनी तौर पे तैयार हो जाए कि हम तो कमजोर हैं, अल्लाह से मुश्किलात मांगते नहीं, मगर अल्लाह ने अगर मुश्किल भेज दी तो अब मैंने अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना है, माफी मांगनी है, मैंने अल्लाह से रुजू करना है, अल्लाह से दुआ करनी है, और मैंने हंगामा, शोर, लड़ाइयाँ, झगड़े, सबकी नींदों को हराम नहीं करना है, हर बंदे को तकलीफ नहीं देनी है इसकी वजह से। कई मरतबा जिसकी तरफ से तकलीफ आ रही होती है उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, घर में इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, बहन भाई होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं इंसान, उनके ऊपर पूरा अपना मलबा जो है वो गिरा रहा होता है, ये बेसब्री है। ऑफिस में नुकसान हो रहा है और घर पे आके बेगम से झगड़ा कर रहे हैं, रिश्तेदारों में लड़ाई हो रही और अब शोहर को सारा रगड़ रहे हैं। सब्र तो ये है कि इंसान इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से माफी मांगे कि ये मेरे आमाल हैं कि मुझे तकलीफ आई, और इंसान अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह गो कि मैं इससे भी ज्यादा तकलीफ के काबिल था, मगर तूने थोड़ी तकलीफ दी, मगर ये तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती मेरे मालिक, रहमत फरमा दे। तो मेंटली अपने आप को इंसान प्रिपेयर करे कि जी अगर मैं सब्र करूंगा तो अजर बहुत ज्यादा मिलना है, यही सही रास्ता है, यही इन मुश्किलात के दूर होने का रास्ता है। और कई मरतबा इंसान को जो तकलीफ होती है वो होती बहुत ही थोड़ी है, उस पे वावेला ज्यादा होता है। जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई होती हैं वो उससे बहुत ज्यादा होती हैं, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं होती है। और जो थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही होती है उसकी तरफ सारी सारी तवज्जो वहीं पे होती है, हंगामा खड़ा किया हुआ होता है कि जी ये बहुत बड़ी चीज है। आपके हंगामे का क्या फायदा, एक वक्त में एक थोड़े दिनों के अंदर इंसान पूरे मुल्क के 3-4 करोड़ लोगों को घर से बेघर कर दिया, खाने पीने को कुछ नहीं। कल किसी ने एक वीडियो भेजा, सूबे सिंध की लोगों से सवाल किया जा रहा था कि जी क्या खा पी रहे हो, उसने कहा पूरे दिन में सुबह एक चाय का कप पीते हैं, उसके साथ रोटी मिल गई तो ठीक है, इसके अलावा 24 घंटे में कुछ नहीं है हमारे पास। अल्लाह अकबर, न घर है और खाने पीने को जो मिल रहा है वो ये हाल है, हम क्या उनसे बेहतर हैं? हम भी अल्लाह की उसी तरह से बंदे हैं, छोटी छोटी बातों पे इतना शोर वावेला करते हैं, इससे भी नाराज, आंसू बहा रहे हैं उससे भी नाराज। और ये एक नहीं, दो नहीं, 3 करोड़ आवाम जो कह रही है मेरा घर खत्म। और खाते पीते क्या है जी, पूरे दिन में सुबह चाय की प्याली मिलती है 24 घंटे में, कभी कभी साथ रोटी भी एक मिल जाती। तो करोड़ों लोगों से हालात तो बेहतर है हमारी, मगर रोना धोना ऐसा है कि हमसे ज्यादा कोई परेशान नहीं है। तो कई मरतबा हालात इतने नहीं बिगड़े होते, हर तरह का हम खर्चा कर रहे होते हैं, जो चाहते हैं खाते हैं, जो चाहते हैं पहनते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। मगर थोड़ा सा कोई ऊंच नीच हो जाए वो हंगामा करना है। अल्लाह अकबर, कहते ये हैं कि हम कुरान के तालिब इल्म है, कहां से कुरान के तालिब। कुरान का तालिब इल्म तो वो है जिसका सर सजदे से उठे ही ना। या अल्लाह, जो तकलीफें हैं उसके मुकाबले में नेमतें इतनी हैं, अल्लाह अकबर। और जो नेमतें अल्लाह ने दी भी है, कभी हम सोचे उन नेमतों में से किसी एक को भी अल्लाह विड्रॉ कर ले तो हमें तो बिल्कुल अपनी औकात याद आ जाएगी। तो सब्र ही हल है इस दुनिया में वक्त गुजारने का। अल्लाह से बंदा मांगता रहे, हम हैं कमजोर, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तकलीफें हमें तंग करेंगी। इसलिए तकलीफों का हल ये नहीं है कि लोगों से लड़ाई झगड़ा करें, अपनी तकलीफ अल्लाह के सामने बयान करें ताकि अजर भी मिले और मसले का वाकईतन हल हो। आखिर को हल तो अल्लाह ने करना है। हदीस पाक में आता है कि सब्र करने पे अजर, सब्र करने वाले का अजर के हवाले से कि कयामत के दिन एक फरिश्ता आवाज लगाएगा, अभी हिसाब किताब भी शुरू नहीं हुआ है, कहेगा कौन है जिसका अल्लाह पे हक है। लोग कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह के ऊपर किसका हक हो सकता है। कहेंगे नहीं, जिसकी जिंदगी में इतनी तकलीफ आई कि उसके आंसू निकल आए, यानी उसने किसी को कुछ नहीं कहा मगर आंखों से आंसू निकल आए, तो उसका अल्लाह पे हक है। तो लोग हाथ उठाएंगे कि जी मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि तकलीफ आई तो आंसू निकल आए, फिर एक कहेगा आंसू निकल आए, ये बहुत बड़ा ग्रोह बन जाएगा। हदीस पाक में आता है कि ये फरिश्ते कहेंगे चलो मेरे साथ, इन सारों को जन्नत के दरवाजे पे ले जाएगा, जन्नत के चौकीदार कहेगा भाई किधर हो, अभी तो सवाल जवाब भी शुरू नहीं हुए हैं, हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ, इतने बड़े लोगों को, इतने सारों को लेके आ गए जन्नत के पास। उसने कहा नहीं, इनको जन्नत भेजना है। वो कहेगा भाई ठहरो, मैं अल्लाह से पूछता हूँ। वो चौकीदार अल्लाह से पूछेगा या अल्लाह इनके बारे में क्या हुक्म है, وہ کہیں گے کہ ان کے بارے میں حکم اللہ رب العزت فرمائیں گے میں قرآن میں دے چکا ہوں، وَيُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، کہ میں صبر کرنے والوں کو اجر پورا پورا دیتا ہوں بغیر حساب کتاب کے، کہ بہت بڑا اجر صبر کرنے پہ ہے، صبر ہی سے زندگی آسان ہے، صبر ہی سے آخرت آسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں نا، یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صبر نصیب فرمائے۔ اس صبر پہ تو یہ کامیابی ملی بنی اسرائیل کو، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ جو کوئی صبر کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے، اور واقعی قرآن صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، یہ عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق، اور وارث کر دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، التي باركنا فيها، جس میں برکت بھی رکھی ہم نے، وتمت كلمة ربك الحسنى، اور پورا کر دیا تیرے پورا اور وعدہ تیرے اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ودمرنا ما کان یصنع فرعون، اور خراب کر دیا، گرا دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون نے، وقومہ، قومہ، اور اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ اونچا کر کے چھایا کرتے تھے، یہ سب کچھ گرا دیا۔ یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و حوث نے مار ڈالا ہے،
तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी जुबूहानी, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, लुटा कर सारी पूजी गफलतो इसिया के दलदल में, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ इज्जो नदावत साथ लाया हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। سبحان ربي العلى البهار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آج کی کلاس کی تاریخ تاخیر سے ختم ہونے پہ معذرت ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس سے وقت پہ کلاس شروع ہوگی اور وقت پہ ختم ہوگی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔